बदले ये आकाश। ओम शांति। आज हमारे बीच में प्यारे बाबा और दादियों के बहुत ही विशेष स्नेही अनन्य रत्न जयंती दीदी हैं, आपका हम बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। और आप विशेष भाग्यवान हैं कि ये भट्टी इंटरनेशनल भट्टी हो गई जयंती दीदी के आने से। वैसे तो आप साकार बाबा और विशेष दादी जानकी जी की पालना में उनके अंग संग रह करके ही इस आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े हैं, तो हम आपके जीवन को दादी जी की शिक्षाओं का स्वरूप ही देखते हैं। जब से मैंने जयंती दीदी को देखा है तो मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि जैसे अभी से ही दादी और बाबा समान जैसे संपन्न स्थिति है। आपको एक टाइटल मिला हुआ है फ्लाइंग एंजल। वैसे तो लंदन में रहते हैं लेकिन लंदन में रहते हुए भी नहीं रहते, पूरे विश्व के देशों के जहां अपने सेवा केंद्र हैं वहां पर जयंती दीदी यात्राएं करते रहते हैं और भाई बहनों को बहुत ही अच्छी पालना देते हैं। और इसके अलावा जो भी अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं विदेश में, जैसे मिलियन मिनट्स ऑफ पीस हुआ, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड, लिविंग वैल्यूज या और भी जो वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फेथ्स है उसमें आप एग्जीक्यूटिव कमिटी में मेंबर हैं, वर्ल्ड रिलीजियंस ऑफ पार्लियामेंट के भी एडवाइजर हैं, तो उसमें बहुत सक्रिय भूमिका आपकी सभी सेवाओं में रहती है। तो आपके लिए मैं कहूंगी, पर्वत में अटलता देखी है, जल में निर्मलता देखी है, चंदन में शीतलता देखी है, हरेक में कोई ना कोई विशेषता होती है लेकिन ये सब विशेषताएं आप में देखी हैं। तो ऐसी विशेष महान ब्राह्मण परिवार की विभूति से हम सुनेंगे, व्यर्थ से मुक्त होकर समर्थ हम कैसे बने। व्यर्थ से मुक्त होना ही सबसे मुश्किल लगता है, तो आज दीदी जी हमको सहज करके बताएंगे।
ओम शांति। जो भी कोई सब्जेक्ट होता ऐसे ही लगता कि बाबा सुन रहे हैं, देख रहे हैं और फिर उसके लिए मुरली के अंदर इशारे भी दे रहे हैं। तो आज सवेरे की मुरली में, वरदान में आपको इस टॉपिक के लिए दो इशारे मिले, राइट? एक ही वरदान था परंतु उस एक ही वरदान में दो इशारे कौन से? एक तो व्यर्थ को बंद करने के लिए फुल स्टॉप, और साथ ही साथ और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये थी कि बाबा ने कनेक्शन जोड़ा परमत और व्यर्थ का। तो यदि आज के ही वरदान पर थोड़ा विचार का लेन देन करते तो मुझे याद आता कि बाबा कई बार अव्यक्त मुरली में ये एग्जाम्पल देते हैं कि जब सीधा रास्ता होता और आपकी नजर सही होती तो आपको वो एक ही सीधा रास्ता नजर आता, परंतु रास्ता क्यों न एक हो परंतु आपकी नजर कुछ नीचे ऊपर हो और आपको ठीक चश्मा न पहना हुआ हो तो क्या होता? आपको पूरा सा नजर नहीं आता कि ये सीधा रास्ता यहां है, आपको थोड़ा सा कुछ ऐसे नजर धुंधली नजर आती जो पता ही नहीं चलता कि रास्ता ये है या रास्ता ये है। तो जब परमत का प्रभाव बुद्धि पर आ जाता तो जो सही रास्ता है जिससे हम समर्थ बन करके अपनी संपन्न स्थिति को प्राप्त करें वो नजर से थोड़ा गायब हो जाता और श्रीमत हमें सीधा रास्ता दिखाती। और बाबा ने कोई ऐसी बात छोड़ी नहीं है जिसको साकार में चाहे अव्यक्त में स्पर्श न किया हुआ हो कि श्रीमत हमें क्या क्या बताती। अमृत वेले के उठने से पहले ही, न सिर्फ अमृत वेला परंतु किस स्थिति में उठ करके अपने मन और बुद्धि को तैयार करके सेट करके आकर के बैठना होता, तब से बिल्कुल रात्रि को लास्ट में बाबा से गुड नाइट करते हैं। किस रूप से गुड नाइट करते, किस भावना से फिर अपना सिर तकिए पर रखते, हर बात बाबा ने एक एक बात बहुत ही क्लियर करके स्पष्ट बताई है कि श्रीमत क्या कहती। तो श्रीमत है सीधा रास्ता, परंतु परमत आता तो आंखें थोड़ी धुंधली हो जाती, बुद्धि पूरा देख नहीं पाती है कि हमें कहां जाना है, उस किस रास्ते से जाना है। तो आज की मुरली में जो परमत की बात थी वो ये थी कि औरों की कहानियां सुन करके, औरों के विचार किसके प्रति सुन करके हमारे बुद्धि में कुछ परिवर्तन आ जाता, कुछ ग्रहण आ जाता, कुछ शैडो आ जाता, छाया आ जाती, जिस कारण से फिर जो बाबा कह रही हैं कि हर आत्मा को उसकी विशेषता से देखो, वो बात थोड़ी मिस होकर फिर हम उसके जो बात सुनी हुई है वो उस व्यक्ति ने किस भावना से क्यों ये बातें कही वो जाने, परंतु हमारे बुद्धि पर जो प्रभाव आ गया उसमें हम तो बाबा की दी हुई श्रीमत से कुछ अलग ही हो गए। उस घड़ी पता नहीं चलता कि हम अलग हो रहे हैं, परंतु रियलिटी तो आप किसी के भी स्वभाव संस्कारों के बीच में आ जाओ, उनों के प्रति आप चिंतन करें, आप कहां पहुंचेंगे? आकाश तक पहुंचेंगे, आकाश से पार बाबा तक पहुंचेंगे, या बिल्कुल नीचे आ जाएंगे? आप जानते हैं। तो एक तो बाबा ने ये बहुत इंटरेस्टिंग श्रीमत से किस तरह से समर्थ संकल्प हो और हम शक्तिशाली बन करके आगे चलते रहें, और उसके कॉन्ट्रास्ट में जब पर मत की बातें आती है तो व्यर्थ बातें तो हजारें होती। श्रीमत है एक, हमें क्या करना है, और श्रीमत है बहुत क्लियर स्पष्ट। और वो बातें जैसे बाबा ने कहा कि हमारे मतलब की ही नहीं है, हम कुछ उसके लिए कर भी नहीं सकते हैं और न हम जिम्मेवार है, परंतु उन बातों का प्रभाव, परमत का प्रभाव ऐसे होता जो आत्मा को बहुत कमजोर कर लेता। व्यर्थ बातों में चले जाओ, आपकी शक्ति कहां चले जाएंगी? उन्हीं बातों में आप खो जाएंगे। और जो 10 मिनट पहले भी आपको अपनी शक्तिशाली भरपूर स्थिति महसूस होती थी, आप व्यर्थ चिंतन में किसी और के प्रति चले जाओ तो आपको बिल्कुल फीलिंग आएंगी कि आत्मा जैसे 10 मिनट के अंदर भी खाली खाली हो गई है। 10 मिनट तो क्या, 1 मिनट का भी पर चिंतन, उसमें आत्मा जरूर खाली खाली हो जाती। स्वर चिंतन का 1 मिनट आपको कितना मजबूत करता है, कितना ऊंचा उड़ाता, और 1 मिनट का पर चिंतन बिल्कुल खाली खाली की महसूसता होने लगती। और जो मुझे सुख था, शांति थी, आनंद था, वो कहां चला गया? बस पर चिंतन की चोर ने आकर के वो खजाना मेरा सारा लूट के चला गया और हमें पता भी नहीं चला। तो आज के मुरली से एक तो ये इशारा मिला कि आप देखते चलो कि किसका प्रभाव मुझ आत्मा के ऊपर है, जबकि ऑलमाइटी अथॉरिटी के साथ कनेक्शन है तो ऑलमाइटी अथॉरिटी का प्रभाव आत्मा के ऊपर है तो हम समर्थ रहते हैं। और यदि वो कोई भी कारण से थोड़ा सा हम उस छत्र छाया के नीचे से हट करके और किसी के छाया के अंदर आ गए तो फिर उसका जरूर वही प्रभाव होगा और उसका रिजल्ट भी हम अपने अंदर ही देख सकते हैं कि क्या हो गया। दूसरा बाबा का ये इशारा था उसी एक वरदान में कि फुल स्टॉप लगाने का अनुभव आप करते चलो, मानो कि कोई कुछ भी कहानी बैठकर सुनाता, उसमें हम बड़ा रुचि से उनसे पूछते, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर उसने क्या बोला, फिर कौन और था वहां। हम इस तरह से इंटरेस्टिंग बातें सुनने की रुचि में होंगे तो हम प्रश्न पूछते जाएंगे और वो कहानी लंबी होती जाएंगे, अनुभव है ना। और जो सुनाने वाला व्यक्ति है उसको और मजा आता रहता और वो उसने मिर्ची मसाला और चीनी डालता जाएगा। परंतु सुनने वाला आपके सामने आए और आपका चेहरा दिल को शांति के सागर में आप डूबे हुए शांत स्वरूप है, वो कहानी सुना रहा है और वो देख रहा है कि आपका कुछ इंटरेस्ट उसमें नहीं है, तो थोड़े मिनट के अंदर ही वो चुप हो जाएगा, कहेंगे मैं किसको सुनाऊं, दीवार को थोड़ी सुनाना था। आपका रिस्पांस मिलता जाएगा, इंटरेस्ट का चाबी लगती जाएंगी और आपका शांत स्वरूप का सुनते हुए नहीं सुन रहे हैं उसको वही फीलिंग आएंगी तो उसका मुख भी बंद हो जाएगा। आपको उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अभी आप ये नहीं बोलो, आपके वाइब्रेशंस, आपकी स्थिति, आपके चेहरे से ही उसको पता चलेगा कि हमारे काम की बात नहीं है, तो फिर अपने आप ही जल्दी में शॉर्ट में वो चुप हो जाएगा। परंतु मोस्ट बाबा इम्पोर्टेंट बात बाबा ने कहा कि आपने अंदर फुल स्टॉप लगा लिया। बाबा कई बार कहते हैं जो ड्राइविंग जानते हैं या ना भी जानते हैं वो देखते हैं गाड़ी में जब होते हैं तो ब्रेक यदि पावरफुल होता तो गाड़ी सेफ्टी से चलती और ड्राइवर ब्रेक लगाए और उसके बाद भी एक मिनट दो मिनट तीन मिनट गाड़ी चलती रहे तो बस नुकसान हो जाएगा, जबरदस्त नुकसान। तो गाड़ी और ब्रेक ऐसे चाहिए जो जिस समय ब्रेक लगाओ तुरंत वो काम करे, एक मिनट के बाद नहीं, एक मिनट के बाद तो टू लेट हो जाता, बहुत ज्यादा ही टू लेट हो जाता। इसी तरह से जो ट्रैफिक कंट्रोल है, एक जैसे कि बाबा हमें अभ्यास करा रहे हैं, कारोबार है, संकल्प चल रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं, बस एक सेकंड में स्टॉप, बाबा की याद, आत्म स्वरूप की स्मृति। तो जब इस प्रकार से हम दिन भर न सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल के समय परंतु दिन भर हमारा अभ्यास चलता रहेगा तो उससे हम अपनी प्रैक्टिस से जो ब्रेक को पावरफुल लगाने का हम अभ्यास करते जाएंगे तो जब कोई बड़ी बात आएंगी या कोई छोटी भी बात हो परंतु उस घड़ी हमारा ब्रेक काम करेगा। यदि किसने अपनी गाड़ी की ब्रेक्स की चेकिंग न कराई है और नाजुक सिचुएशन आती और उस समय ब्रेक काम नहीं करती तो उस समय तो पश्चाताप होता कि इतना सारा नुकसान हो गया। तो इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि अभी से ही हर प्रकार का अभ्यास चालू रहे और साथ साथ आप उस अभ्यास को और आगे बढ़ाते जाएं ताकि वो आपका ब्रेक पावरफुल बनता जाए। कल हमको कुछ बात होती थी तो ब्रेक लगाने में थोड़ी मेहनत लगती थी, टाइम लगता था, फिर प्रैक्टिस करते करते आज यहां तक पहुंचते हैं जो जल्दी में ब्रेक लग जाती, उसका इफेक्ट आ जाता और फिर शांति से हम योग लगाकर जो शक्ति चाहिए वो बाबा से अपने में हम भर सकते हैं। बाबा पिछली मुरली में अव्यक्त रिविजन कोर्स मुरली और अभी भी संडे की मुरली में ब्राह्मण जीवन का महत्व, संगम युग का महत्व बहुत ही सुंदर एक कवि के रूप में बताते रहे हैं। तो यदि हमें अपने आप को जान करके हम उसका महत्व रखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारा समय कितना कीमती है और एक मिनट, पांच मिनट, दस मिनट हमारे और प्रकार के संकल्प चले तो उससे हम संगम युग की प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। अपने संकल्प के आधार से ही मन मनाभाव होकर के बाबा से संबंध जोड़ के हम सब कुछ बाबा से ले सकते और अपने व्यर्थ चिंतन के कारण हम उसको खो बैठते। तो अपने पास चॉइस है कि हम क्या चाहते हैं, क्या हम प्राप्ति चाहते हैं क्या हम पश्चाताप चाहते हैं। यदि प्राप्ति चाहते हैं तो ब्रेक को हमको यूज करने आता भी हो परंतु उसका खूब अभ्यास करना होगा, बार 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 बार। आपको याद होगा एक चित्र था जिसमें चार स्थिति योग की दिखाते थे। पहले स्थिति दिखाते थे मेडिटेशन, जिसमें पहले संकल्पों को शांत करके एक तरफ जोड़ना होता। दूसरी उसमें दिखाते थे योग। तीसरी स्टेज उसमें दिखाते थे रिलेशनशिप और चौथी स्टेज दिखाते थे रियलाइजेशन। याद है किसको ये चित्र? चार चित्र थे, एक मूर्ति बैठी है तपस्या में और ये वो मेडिटेशन, इनिशिएशन, मेडिटेशन, योग आदाद। तो जब रियलाइजेशन का आता तो उसमें हम एक्सप्लेन करते थे कि ये है जिसको बाहर वालों के लिए कहते हैं रियलाइजेशन की स्टेज और ब्राह्मणों को हम कहते थे ये है बीज रूप स्थिति जिसका बाबा कई बार वर्णन करते हैं। तो एक दिन चार पांच वर्ष पहले अपने पास दादी गुलजार भी आई हुई थी, दादी जानकी भी थी, तो दोनों का डायलॉग चला था योग के ऊपर ब्राह्मणों की सभा में। तो उस समय दादी जानकी ने कहा कि बीज रूप स्थिति आप लोग दिखाते हो कि फोर्थ स्टेज है और हाँ मैं समझ रही हूं कि आप क्यों इस तरह से दिखाते, परंतु रियलिटी तो ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट है बीज रूप। दादी हमेशा एक नए प्रकार के ढंग से बुद्धि को चलाते। क्यों? क्योंकि कोई भी बात के अनेक प्रकार के पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, दृष्टिकोण हो सकते हैं, और यदि बुद्धि को हम बाबा के ज्ञान से खेलते खेलते, रत्नों को देखते देखते हम और नई बातें सोचते जाते तो हमें उन ज्ञान रत्नों के मूल्य का अधिक वैल्यू होती, अप्रिशिएशन होती। परंतु साथ साथ बुद्धि को टाइम नहीं होता और फालतू चिंतन में जाने का। तो अभी दादी की तो तबीयत को आप जानते हैं, इतना समय से आप लोगों ने देखा नहीं होगा दादी को, क्योंकि मार्च 21 तारीख पहला फ्रैक्चर था, फिर उसके बाद दूसरा फ्रैक्चर हुआ, फिर कहानी बनती गई बनती गई बनती गई, आखिरी नवी आकर के उस कहानी की अंत पहुंची है जिसमें बाबा की मदद से, सबके योगदान की शक्ति से और दादी के स्व के पुरुषार्थ से, वो भी मैं जरूर कहेंगी कि दादी की हिम्मत और स्व का डिसिप्लिन और पुरुषार्थ वो कितना हमने देखा होगा। तो ये सब बातें देख करके फिर अभी दादी की तबीयत थोड़ी ठीक होती जा रही है, परंतु बीमार तन था परंतु मन तो यान तो बाबा की याद में शांत था, यान तो ज्ञान रत्नों के साथ खेलते खेलते दादी कुछ अच्छी अच्छी बातें भी सुनाती रहती थी। तो ये भी उस समय कुछ वर्ष पहले जब दादी ने कहा कि बीज रूप स्थिति पहला स्टेज है, तो मैंने सोचा कि शायद मैंने गलत समझा है। तो फिर दादी से मैंने पूछा कि आप और स्पष्ट करें, तो फिर दादी ने कहा कि मैं वो चित्र की बात नहीं कह रही हूं, दादी को मालूम था उस चित्र का, मैं बात कर रही हूं कि कोई भी दिन हर दिन जो बात सामने आती है यदि हम उसको तुरंत ही बिंदु बन करके बिंदु नहीं लगाते हैं तो जो उसका विस्तार हमारे बुद्धि में चलने लगता वो हमारे योग में बांधा डालता। तो दादी ने उस समय ये बात बताई कि कोई भी बात सामने आए आप बिंदु स्वरूप होकर के अपने उस स्वधर्म की स्थिति में स्थित हो जाओ और प्रॉब्लम का नहीं सोचो। प्रॉब्लम का तो इतना समय से सोचते 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 कहां तक पहुंचे हैं, और आप अपने अनुभव को याद करो, प्रॉब्लम का सोचते कभी हल निकला है? जब प्रॉब्लम को एक किनारे रखते हैं, बाबा को याद करते हैं, फिर बाबा की टचिंग से याद आता कि अब हमें इस बात में क्या करना होगा। तो जैसे बाबा कई बार कहते हैं, यान तो होंगी बात यान तो होंगा बाप। तो जिस समय दादी भोजन पर जाती थी तो उस समय भी टेबल पर भी यान तो साइलेंस यान तो चिटचैट, ज्ञान की चिटचैट, ज्ञान की रूरेहान। और फिर उसमें दादी यही हमें कहती थी कि ज्ञान की भी चिटचैट हो तो भी उसमें भी फुल स्टॉप लगाने की जरूरत होती, सेवा का चिंतन हो उसको योग नहीं कहेंगे, जब सेवा के चिंतन को भी फुल स्टॉप लगाते हैं तो फिर सच्ची दिल से बाप को याद करते हैं उसी को ही कहेंगे योग अथवा तपस्या। तो दिन भर आप सोचो कि कदम कदम पर कितनी बातें आती और फिर जमा होते 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 आप जब योग में बैठने की कोशिश करेंगे बुद्धि कहां जाएंगी? जो दिन भर बातें आपके बुद्धि में घूमी है वहां पर ही बुद्धि जाएंगे, कोई नई बात तो नहीं शुरू होंगी, वही कहानी चलती रहेंगी। यदि हमने अभ्यास किया हुआ होगा बस फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप, तो फिर अपने आप ही वो बात ठीक हो जाती, क्योंकि बाबा की शक्ति हर बात को सुलझा सकती। और बाबा के बच्चे क्या करते, जिस समय कोई प्रॉब्लम आती उस प्रॉब्लम को पकड़ लेते हैं और उस प्रॉब्लम का खूब चिंतन चलता। परंतु ये हम सोचे कि जिस बात की मुझे जिम्मेवारी है मुझे उस पर ध्यान देना है, न कि जो और कर रही है या नहीं हो रहा है उस पर मुझे ध्यान देना है। और सूक्ष्म बातों पर ध्यान देना सहज है या मुश्किल है? स्थूल बातों पर ध्यान देना एक तरफ कहेंगे सहज है परंतु उसमें तो चाहिए मेहनत, और सूक्ष्म बातों पर ध्यान देना एक तरफ चाहिए इतना अटेंशन परंतु दूसरी तरफ कोई उसमें आपकी एनर्जी खर्च नहीं होती और ही आपको एनर्जी मिलती रहेंगी। तो आज बाबा ने कहा फुल स्टॉप लगाओ। बीज रूप बन जाओ। जो बातें हमारे कान की है, काम की है, ज्ञान की बातें, खूब इंजॉय करो। बाबा नहीं कहते कि बस सीरियस होकर के बैठ जाओ, नहीं, इंजॉय करो। बाबा के कितनी इंटरेस्टिंग महावाक्य होते हैं एक ही मुरली में, अनेक बातें होती परंतु बाबा इतना मजे से बताते हैं जिससे हंसी भी आ जाए। तो जब हम फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करते हैं तो हमारे व्यर्थ संकल्प कमती होते 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 हम जरूर बाबा तक पहुंच ही जाएंगे। आप देखेंगे कि श्रीमत के आधार से सहज बाबा की याद रहती, संकल्प समर्थ रहते। परमत के आधार से या मनमत के आधार से बाबा याद रहेगा। जिस व्यक्ति का प्रभाव है बुद्धि के ऊपर वो व्यक्ति याद रहेगा। और न सिर्फ जो आपके घर पे मिलने के लिए आए या ऑफिस में मिलने के लिए आए, परंतु जो भी हमारे संपर्क में हो, उनको हमसे ये फीलिंग आए कि हम उनको किस बहुत महान दृष्टि से देख रहे हैं और हमारे संग से वो बाबा के नजदीक का अनुभव करते हैं। बाबा शब्द उनको मालूम भी न हो परंतु उनको फीलिंग तो जरूर आ सकती। चार लोग ट्रेन के डब्बे में बैठे हो तो एक एक का अपना अपना वाइब्रेशन होता, अलग ही होता। कुछ बोले ना बोले, अपना अखबार पढ़े, अपना बुक पढ़े, अपना म्यूजिक सुने, कुछ भी कर रहा हो, परंतु पता पड़ता है। तो दिन भर जो हमारे संकल्प चले, हम ये देखें कि किस क्वालिटी के संकल्प चल रहे हैं। और व्यर्थ से भी एक और नेक्स्ट स्टेप आता, नेगेटिव, वो तो छूटा, फिर व्यर्थ, परंतु उससे भी और सूक्ष्म, साधारण। तो आजकल दादी तो हमेशा हम लोगों को कहती है कि आपको कोई साधारण न दिखे। और साधारण या विशेष, उसका कनेक्शन कोई कपड़े के साथ नहीं है, कोई पोजीशन के साथ नहीं है, किस प्रकार की गाड़ी में हम आते हैं या पैदल आते हैं उसका मतलब नहीं है, परंतु आंतरिक स्पिरिचुअल अथॉरिटी वो नजर आनी चाहिए। किसी के लिए दादी ने मुझे कहा कि हाँ अभी उसमें बहुत रौनक आई है और वो तो बहुत समय से वो कार्य कर रही है, कार्य संभाल रही है। तो मैंने कहा दादी अभी से ही सिर्फ आप कहते हो या कुछ समय से आप कहते हो? तो दादी कहे नहीं, मैं अभी के लिए कह रही हूँ, अभी उसमें कुछ आध्यात्मिकता की रौनक आई है। तो ज्यादा तो दादी डिटेल में वर्णन नहीं करती, परंतु उस आत्मा को मैं भी जानती हूँ, मुझे मालूम है कि उसका बहुत समय से समर्पण जीवन चल रहा है, परंतु मैं भी थोड़ा सोचने लगी और मुझे भी ऐसे ही लगा कि हाँ अभी उसके चेहरे में वो रूहानी आकर्षण आ गई है। उसका आधार जो अपने संकल्प चलते, व्यर्थ संकल्प चलेंगे तो आपका चेहरा कैसे लगेगा? आपने कभी खास आईने में जाकर के देखा है? मैं खास बहनों की तरफ देख रही हूँ, घर पे उनको ज्यादा चांस है आईने में देखने का, भाइयों को भी तो आजकल कहाँ न कहाँ आईना, लिफ्ट में भी आजकल आईना लगा लेते, तो आप कहाँ जाओ आओ अपने चेहरे को देखना, कंघी ठीक है, टाई ठीक है, वो नहीं देखना, परंतु चेहरा चमकता हुआ हो, चेहरे में बिल्कुल ऐसी रूहानियत हो जिससे वो आत्मा बाबा के नजदीक आ जाए। तो अंदर की बात बिल्कुल बाहर के रूप में प्रत्यक्ष नजर आती, और अंदर की बात हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका प्रभाव उसके ऊपर जरूर पड़ता। मानो कि अंदर में हमने समर्थ संकल्प रखे हैं, श्रेष्ठ संकल्प रखे हैं, चाहे स्व के संबंध से, चाहे अपने परिवार, चाहे विश्व के लिए। तो जब हम समर्थ संकल्प रखते हैं तो आपके चेहरे कैसे होंगे आप जाके देखना। बिल्कुल बहुत ही हर्षित, बहुत ही चमकता हुआ। और व्यर्थ संकल्प चलते उसमें तो यहां से लाइंस आ जाती। कई लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों के चेहरे सदा यंग लगते, लगता ही नहीं है कि ये 50 इयर्स, 60 इयर्स, 70 इयर्स तक पहुंच गए हैं। तो हम उनको यही बात कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज को ये बिल्कुल विश्वास है कि वो हमारे साथ है, वो हमें मदद कर रहा, तो हमें किस बात की चिंता, कोई प्रकार की चिंता की बात ही नहीं रही। आपका चेहरा देख करके और बाबा के नजदीक आए, ऐसे हो सकता? न सिर्फ जब आप योग में बैठे हैं या मधुबन में अव्यक्त बाप दादा के सामने बैठे हैं, परंतु चलते फिरते इनसाइड आउट जो कुछ अंदर है वो बाहर नजर आता। तो बाबा ने जो हमें अखूट खजाना दिया है श्रेष्ठ संकल्पों के रचने के लिए, जितना हम बाबा की मुरली से वो खजाना लेते हैं, आप कभी देखो 3 पॉइंट्स, ज्यादा नहीं नोट करो मुरली का, हर मुरली से 3 पॉइंट आप निकालकर न सिर्फ यहां नोट करना, कागज पर नोट करना। फिर जब ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम आए, आप 1 सेकंड उसको झांक के देख करके फिर आप रख लेना और फिर उस बात का आप अनुभव करना। सबसे अफसोस की बात यह होती जबकि कोई ब्राह्मण कहता है कि मुझे बाबा का अनुभव नहीं हो रहा, उसका कारण कि तार नहीं जुटी है तो वो करंट का अनुभव नहीं होता। तो प्रश्न है कि तार हमारी कैसे जुटे जिससे हमें लगे कि हां सचमुच हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने देखा है कि दिन भर थोड़े समय के लिए या ज्यादा समय के लिए, जो भी आपको टाइम हो, आप देही अभिमानी रहने की स्थिति का अभ्यास करेंगे तो उसमें अच्छी तरह से आपको पता चलता जाएगा मन मेरा शांत चित है या मन मेरा कुछ अलग प्रकार से एक बंदर के समान नाच रहा है। और शांत चित तब होगा, और न सिर्फ योग के टाइम, टोटली मैं कह रही हूं, जब हमारे मन में एक बाबा और कोई प्रकार की इच्छाएं न होती। व्यर्थ संकल्पों को आने का एक तो कारण श्रीमत से कुछ किनारा कर लिया, दूसरा कि हम गलत बातें सुनते तो बुद्धि उस तरफ भागती, तीसरा अपने मन में कुछ संकल्प होता, सिंपल भी बात हो सकती कि आज मुझे ये भोजन चाहिए, परंतु बाय चांस वो भोजन नहीं बना है, कुछ और चीज बन गई है, तो अपने मन को मनाने के लिए मुझे कितना समय लगा, तुरंत? और मैं ये कहूं कि कोई हर्जा नहीं, वो तो कभी और दिन भी खा सकते, जो सामने है वो ही भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, ब्रह्मा भोजन है, वो ही ठीक है। तो दोनों प्रकार के बाबा के बच्चे होते हैं, एक इस प्रकार से कहने वाले, जल्दी में स्वीकार करने वाले, और फिर दूसरे जो देख करके कहेंगे मैंने तो कहा था ना कि मुझे वो चाहिए, मुझे तो ये चाहिए ही नहीं, इससे तो अच्छा है मैं खाना ही ना खाऊं। आप सोचो कि न सिर्फ मेरे व्यर्थ संकल्प चल रहे और व्यर्थ बोल निकल रहे जिससे वातावरण खराब हो रहा, परंतु साथ ही साथ हमने औरों के भी व्यर्थ संकल्प चलाने के हम निमित्त बने। दादी एक छोटी सी कहानी सुनाती, जब दादा विश्वरतन कहीं है, जो दादा विश्वरतन को देखा होगा, देखा था, हाथ उठाओ, अच्छा थोड़ों ने, ज्यादा नहीं, तो दादा विश्वरतन बिल्कुल एक महान योगी आत्मा थे, और थोड़ा समय ही हुआ है, शायद 5-6 वर्ष ही हुए होंगे उसके देहांत को, ऐसे ही होंगे ना 5-6 वर्ष, ज्यादा तो नहीं, 7 साल जी, अच्छा देखो कितनी न पांडव भवन की आकर्षण, जो एक दिन पहले ही सारा पांडव भवन का चक्कर, जी जी, तो बहुत ही महान योगी आत्मा, और 18 साल की आयु में बाबा के पास आए, सच्चा सच्चा कुमार, और बाबा इसमें इतना विश्वास रखते थे, जो रात्रि भर का जागरण होता था जिसमें पत्ते पत्ते एक एक अपने हाथ से निकाल करके पेंट करते थे, कल्प वृक्ष का चित्र 6 फीट लंबा हो उसमें कितने पत्ते होंगे, आप सोचो अनगिनत पत्ते, तो बाबा ने ये एक युक्ति रची थी जागरण कराने के लिए। कराची के दिनों में बाबा उनको कहते थे कि बस अभी आप योग बैठ के करो तो जरूर नींद आती, क्योंकि इतना तो योग का न ज्ञान था न इतना अभ्यास था, परंतु बाबा ने कहा बच्चे ये चित्र तैयार करना है, तो बाबा ने इसको मुख्य रखा और उसके साथ बाकी सब कुमारियां, और कहने का मतलब बाबा को उसमें इतना विश्वास, जो बिल्कुल बाबा को मालूम है इसकी दृष्टि वृत्ति बस एक बाबा, दूसरा न कोई, तो सारी रात बहनों के साथ जागरण करते थे कई बार। तो वो जब पूना में गए थे दादी के पास, दादी ने उनसे पूछा था कि दादा आप क्या अपना पुरुषार्थ करते हो जिससे आपकी इतनी योगी अवस्था है, और वो बहुत वर्षों तक तो अमृत वेले का भी योग खुद ही ड्रिल कराते थे पांडव भवन में, यहाँ हिस्ट्री हॉल में। तो उसने बताया कि देखो मैं ये सोचता हूं कि मेरे कारण किसी के भी व्यर्थ संकल्प न चले, मैं अपना तो व्यर्थ संकल्प न चलाऊं परंतु और किसी का भी संकल्प न चले, मानो कि अभी किसकी कॉपी रखी है, और मैंने सोचा कि मैं बस 5 मिनट देख करके फिर मैं वापस रख लेती हूं, तो कॉपी तो यहां थी, फिर मैं जाकर के यहां बैठ करके वो कॉपी पढ़ रही थी, ज्ञान के ही नोट्स है, कुछ और तो है ही नहीं, प्राइवेट की तो बात ही नहीं, तो मैं तो बड़ा मजे से बैठी हूं, और मुझे ये पता ही नहीं चला कि जिसकी वो कॉपी थी यहां उसने नहीं देखी, वो ढूंढते 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 कितने संकल्प उसके चले होंगे, कहां गया, मैंने तो यहां रखा था, कौन लेके गया, पता नहीं कहां चला गया, कब वापस मिलेगा, उसमें तो बहुत मेरी अच्छी अच्छी पॉइंट, आप सोचो कितने संकल्प चलते। तो दादा ने कहा कि मैं ये सोचता हूँ कि जो चीज जहाँ की है मुझे वहां यदि उठाने के लिए बोला गया है मैं उठा करके बस मैं वहां ही रखूं। तो मैं इतना ध्यान रखता हूँ कि मेरे व्यर्थ संकल्प न चले, परंतु मेरे कारण दूसरे के व्यर्थ संकल्प भी न चले। आप सोचो कि जब उसने इतना ध्यान रखा तभी उसकी योग स्थिति ऐसे रही जिस आधार पर वो वर्षों तक अमृत वेले का योग कराने के निमित्त वो बैठे थे। तो व्यर्थ संकल्प चलते हैं जब, कई बातें तो बता दी परंतु उसमें ये एडिशन, जो हम चाहते हैं वो यदि नहीं हो पाता वैसे हम शब्द कहेंगे इच्छा। परंतु कोई कह सकता है कि मुझे तो कोई बात की इच्छा ही नहीं है, जो बाबा ने खिलाया जहां बाबा ने बिठाया वो तो ठीक है। परंतु फिर जब रियल सिचुएशन आता हम सोचते परंतु ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों नहीं होना चाहिए था। तो ये जो संकल्प चलते हैं क्यों, क्योंकि हमारी मन पसंदी की बात नहीं हुई। यदि उसको और आगे बढ़ने देती हैं तो न सिर्फ वो व्यर्थ संकल्प होते, वो तो बिल्कुल ही आत्मा को पकड़ लेते और व्यर्थ संकल्प से तो और ही गलत संकल्प चढ़ने लगते। तो यदि हम ये सोचे कि किस प्रकार के संकल्प हमें रखने हैं और हम और किसी भी प्रकार की बातों में हमको जाना ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, श्रीमत श्रीमत के आधार से हमें चलना है। बाबा ने कहा कि आपके संकल्प भी मेरी आज्ञा अनुसार हो, आपके संकल्प भी आप हमें स्वाहा करके अथवा समर्पण करके जाएं। तो यदि आज के दिन भी आप इतना ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि जरूर पांडव भवन में बाबा के विशेष वरदान भूमि पर आपको विशेष मदद मिलेंगे, अनुभव होगा कि हाँ आज का दिन हमारा बहुत ही सुंदर बीता, बाहर से सब सेम ही था परंतु अंदर से मैंने अधिक अटेंशन दिया और मैंने ये सोचा कि मुझे सिर्फ श्रेष्ठ संकल्प करना है। एक्सपेरिमेंट करके आज के दिन देखना, ठीक है? ओके, बाबा की याद में बैठती हैं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद जयंती दीदी को, हमारे लिए विशेष समय निकाला और बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन व्यर्थ को समाप्त करने का हमें दीदी से मिला। थैंक्स।